کوشش کی ہے کہ آئی کڈ گیٹ انٹرویو فار جناب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب، لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، مگر اس وقت آپ کو لے کر کے چلتی ہوں چند ایک اسپانسرز کی طرف، پلیز اسٹے ٹیون، اسٹوڈیو کا نمبر 416-620-1778۔
ان سب کاموں کے لیے تو مجھے بیک ہوم ہی جانا پڑے گا۔
کون سے کام؟
وہی، بیٹے کی شادی سر پر ہے اور جیولری کا خاص کام ابھی تک نہیں ہوا۔
بس اتنی چھوٹی سی بات، پائل جیولرز پہ ہر قسم کی جیولری ہے اور وہ اسپیشلائز کرتے ہیں ان سب میں ہی، دبئی، سنگاپور، انڈیا، پاکستان اور یہاں کی تمام لیٹسٹ جیولری۔
مجھے ان کا ایڈریس بتاؤ، میں آج ہی یہ کام جا کے کرواتی ہوں۔
جی جی بالکل، پائل جیولرز کا ایڈریس ہے 2720 نارتھ پارک ڈرائیو، یونٹ 42، برمپٹن۔ پائل اس کے اسلم بھائی کو کال کریں نا ایٹ 905-790-7879، دیٹ از 905-790-7879۔
کچھ حلال پاکستانی فوڈ کھانا ہے، ایسا جو دل کو لگے۔
ارے مزیدار کڑاہی، بریانی، سیخ کباب، چکن رول، بٹر چکن، کڈز مینیو، بہت کچھ، ٹیک آؤٹ، ڈائننگ یا پھر کوئی اسپیشل ایونٹ، ہر چیز پاسبل۔ اور ہاں، کڑھائی پوائنٹ کی سگنیچر ڈشز ٹرائی کرنا مت بھولنا۔
میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ گیا ہے۔
تو پھر جائیے 285 سینٹینیل پارک وے، اسٹونی کریک، ہیملٹن، 905-664-8866۔ یاد رکھنا 905-664-8866۔
کڑھائی پوائنٹ، اسٹونی کریک،
جہاں ہر میل ایک سیلیبریشن ہے۔
پائی سستا لالا، انج کر، تو 6 دی بجائے 5 لے لا۔
اوہ سرلا بہن جی، کینیڈا آ گئے تسی، ایتھے سبزیاں پیچھے بارگین کرن دی لوڑ نہیں، کیونکہ ایشین فوڈ سینٹر تے ودیا فریش گروسری، فروٹس، دالاں، سبزیاں، سب کچھ بہت کٹ قیمت وچ ملدا۔
اے جی ایشین فوڈ سینٹر، انڈو کینیڈین گروسریز، پھل فروٹ، دالاں، سبزیاں دی ون سٹاپ شاپ، نالے ساڈے کول انڈیا والے بھانڈے، پلیٹاں، باٹیاں، سب کچھ ملدا ہے۔ ساڈی ساریاں ہی لوکیشنز تے سونیاں سونیاں رکھڑیاں دی بے شمار ویرائٹی وی ہے۔ ایشین فوڈ سینٹر دیاں اونٹاریو وچ 9 لوکیشنز وچوں جتھے مرضی آ جاؤ۔
کچھ حلال پاکستانی فوڈ کھانا ہے، ایسا جو دل کو لگے۔
ارے مزیدار کڑاہی، بریانی، سیخ کباب، چکن رول، بٹر چکن، کڈز مینیو، بہت کچھ، ٹیک آؤٹ، ڈائننگ یا پھر کوئی اسپیشل ایونٹ، ہر چیز پاسبل۔ اور ہاں، کڑھائی پوائنٹ کی سگنیچر ڈشز ٹرائی کرنا مت بھولنا۔
میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ گیا ہے۔
تو پھر جائیے 285 سینٹینیل پارک وے، اسٹونی کریک، ہیملٹن، 905-664-8866۔ یاد رکھنا 905-664-8866۔
کڑھائی پوائنٹ، اسٹونی کریک،
جہاں ہر میل ایک سیلیبریشن ہے۔
ٹرکنگ والے ویرو، دھیان نال سنو، ٹرک جدہ بھی چلاونے ہو، مینوئل یا آٹومیٹک، کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو، ٹرک دی بڑیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب۔ لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا، ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی۔ آہو جی، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی۔ کوئک ٹرک لیوب، دا ون سٹاپ شاپ، 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com۔ کیو ٹی ایل، بیکاز وی کیئر۔
ارے جنہ بھی سونا ہوے ہو ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ट्रक ड्राइवर भाइयों, अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा, वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड, नो रुकावट। सफर बिजनेस का हो या शौक का, वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी। ट्रैवल कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान या हज या उम्रे के लिए, वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन, दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं। घर हो या केबिन, वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में। विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836। कनेक्शन आपका दुनिया के साथ।
जी साहब, प्रोग्राम में एक दफर से खुश आमदीद कहना चाहते हैं हमारे फमा जफर आपके साथ प्रोग्राम में खुश आमदीद। 5:04 का वक्त हुआ चाहता है। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में एवरी मंडे को जनाब आशर अजीम साहब शामिल हुआ करते हैं। आशर अजीम साहब बहुत अच्छे राइटर भी हैं, जैसा आपको पता ही है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामे, धुआं टाइप के ड्रामे आपने लिखे, और यकीनन हकायक को राइटर कोई भी हो मुख्तलिफ अंदाज से अपनी चीज को पेश करता है, जिसमें जो क्रॉनिक सिकनेस के कॉजेज होती हैं बाज़ुकात कम्युनिटी में, उन सिकनेसेस के बारे में भी निशानदेही करता है। आशर अजीम साहब के बहुत सारी पोएम्स की अगर आप जिक्र कर, ड्रामो की जिक्र कर लें, फिल्म मालिक के नाम से फिल्म है और आजकल जुबान ज़दे आम है फिल्म मालिक। जब मैंने ये ISPR के हवाले से खबर सुनी कि ISPR ने एक फिल्म जो है वो बनाई है और उसकी तशहीर के हवाले से, आई वॉज लिटिल सरप्राइज कि मालिक फिल्म तो आशर अजीम ने उस जमाने में बनाई थी जब नवाज शरीफ साहब का दौर था और इस फिल्म को बाकायदा बैन किया गया था पाकिस्तान में, एंड आई नो द मैन हैज लॉस्ट अ लॉट ड्यूरिंग दैट। मगर यकीनन मोहब्बत का ये भी नहीं है कि हम मोहब्बत में आके किसी की पार्टी, हालांकि नवाज शरीफ की पार्टी वो थी, अगेन उनका मेरे से राय मुत्तफिक होना, मेरा उनसे मुत्तफिक होना कोई जरूरी नहीं है, कि नवाज शरीफ साहब का दौर था जिसमें ही हैड टू पे दिस प्राइस। आज भी वो मुल्क की बात करते हैं एंड ही डजंट टॉक अबाउट एनी पार्टी, दिस इज एज फार एज आई नो एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अब वो अलग बात है कि आप में से बहुत से लोग मेरे जैसे जिनको ये लगता है कि मेरी बात नहीं कर रहा तो शायद ये साडा दुश्मन है, साडा वैरी है। वी ऑल लव पाकिस्तान, वी ऑल वांट टू वर्क फॉर दी पाकिस्तान की बका के लिए हमने बात करनी और इसके अलावा कोई भी बात नहीं करनी। आज पाकिस्तान में जब ये खबर है कि जो मालिक फिल्म है, तो जब मुझे आया कि ISPR ने प्रेस रिलीज की है और मालिक फिल्म जो ISPR की बनी हुई फिल्म है, अब अगेन इट्स अ प्रोपेगेंडा, इट इज 110% अ प्रोपेगेंडा बिकॉज आई नो। तो मैं दिल में सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग बिकॉज आई न्यू द बैकग्राउंड, आई थॉट इसका मतलब है कि ISPR ने सीक्वल 2 बनाया होगा, बिकॉज ISPR कैसे मालिक बना सकता है, मालिक बिलोंग्स टू आशर अजीम। एंड देन आई थॉट कि अच्छा बस अलमिया पाकिस्तान का ये है, शायद अब एस्टेब्लिशमेंट के पास भी और कुछ नहीं, दे डिड नॉट हैव एनी अदर नेम, तो उन्होंने आशर अजीम का नाम चोरी कर लिया। बट आई वॉज रॉन्ग इन बोथ एस्पेक्ट्स, मैं गलत थी। ये मुझे लगता है कि ये वो तीसरी दुनिया के वो लोग जो मतलब झूठ की बात करते हैं, हिपोक्रेसी और झूठ की मैं बात करती हूं बहसियत मुसलमान। कोई रिलीजन भी झूठ की अलाउ नहीं करता, मगर हम अपनी अपने नजरिए को प्रमोट करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, हम झूठ के साथ झूठी अहादीस भी लगा देते हैं, दैट्स व्हाट वी डू। एक तो हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, एक हमने टॉपिक बात करना है कि हम कहते हैं कि जी सहाफत की का जो है ना अलम बुलंद होना चाहिए। क्या हो रहा है इंडिया में? हम कहते हैं जी इंडिया में तो बीजेपी पार्टी के सारे सहाफी हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग इज इन पाकिस्तान, देर इज मनी टॉक्स, एग्जैक्टली 100% सेम इज इन अमेरिका। आप देखिएगा एसोसिएटेड प्रेस को व्हाइट हाउस ओवल हाउस से ऑफिस में से निकाल दिया गया बिकॉज एसोसिएटेड प्रेस ने इनकार किया था कि यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट चेंज नेम। हम यूरोपियन यूनियन को भी रिपोर्ट करते हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट, हाउ वन पर्सन कैन चेंज एक जजीरे का नाम, एक बे का नाम चेंज कर सकता है। दे वर बैंड टू एंटर इन ओवल ऑफिस। तीसरी बात, चौथी बात, हम हिपोक्रेट लोग हैं, हम ये कहते हैं कि सहाफी का बड़ा दर्जा बुलंद है, बिल्कुल बुलंद है, मगर गजा में जब सहाफियों के नाम पे शहादतें हो रही है तो जर्मन मीडिया जो है वो जो पोर्ट्रे कर रहा है कि ये वो सहाफी नहीं है, ये वो दहशतगर्द है, बिकॉज दे आर रिपोर्टिंग समथिंग व्हाट आर द फैक्ट्स, दे आर अनवेलिंग फैक्ट्स, तो दे आर अनवांटेड। सहाफत की ही बात करते हैं तो जब बच्चे मरते हैं गजा में या औरतें मरती हैं बच्चों गजा में तो हम उसका नाम नहीं देते, मगर जब बच्चे मरते हैं यूक्रेन में बिकॉज पूरा का पूरा यूरोप जर्मनी इज सपोर्टिंग यूक्रेन, तो वहां हम कहते हैं बच्चों को मार दिया गया, जवान औरतों को मार दिया गया। पर अनफॉर्चुनेटली कैसे हम इतना झूठ बोल सकते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आशा रजीम से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्रोग्राम को, ये आवाज आप सब्सक्राइब जरूर करें। आशा रजीम मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू आशा रजीम साहब, आप कैसे हैं?
गुड अरफा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके तमाम देखने वालों को सलाम पेश कर दें।
सर थैंक यू वेरी मच। आशा रजीम साहब, जब मैंने ये खबर सुनी कि फिल्म मालिक, तो मेरा बड़ा दुख है, पाकिस्तान के लोगों के पास ना क्रिएटिविटी नहीं है, सानू ओदा ना चोरी करण दी आदत है, ओंदा ना चोरी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये न्यूज पढ़ी और उसको रिलेट किया गया था प्रेस रिलीज ISPR के साथ, विच माइट बी रॉन्ग अगेन, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया था लो हूं एस्टेब्लिशमेंट नहीं, कोई होर ना नहीं सी लभ्या। देन आई सेंट यू दिस न्यूज इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक इट वॉज पोस्टेड ऑन एक्स जहां से मैंने इसको लिया था। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के बड़े जय्यद सहाफी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जी फिल्म मालिक तो जी थी वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाई गई थी, हालांकि ये फिल्म तो जब बनाई थी आप नवाज शरीफ साहब का दौर था, फिल्म आप रिलीज नहीं कर सके थे, यू हैड अ वेरी स्ट्रांग हिट आपको मिली थी, पैसे का ठीक ठाक आपका नुकसान हुआ था, बट वुड यू से अबाउट इट?
आरफा जी, कोई भी बात इनमें से ठीक नहीं है। आई डोंट रिकॉल एवर ISPR इशूइंग एनी स्टेटमेंट सेइंग कि जी प्रेस रिलीज अगर आपके पास है तो आई वुड लव टू सी इट, कि जी जिसमें उन्होंने कहा हो कि मालिक उन्होंने बनाई है, एक तो ये वाली बात। दूसरी जो आपने कहा कि मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये भी करेक्ट नहीं है। मैंने मालिक बनाई थी, मेरी फिल्म तमाम पाकिस्तान में तीन सेंसर बोर्ड्स हैं जी, एक पंजाब का सेंसर बोर्ड है, एक सिंध का सेंसर बोर्ड है और एक इस्लामाबाद का सेंसर बोर्ड है। इस्लामाबाद का जो सेंसर बोर्ड है वो KPK और बलूचिस्तान के लिए पे उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है। KPK के लिए तो ज्यूरिस्डिक्शन शायद उसकी अलग है, लेकिन KPK में मेरी फिल्म चल ही नहीं सकती थी, वो रिलीज नहीं हो सकती थी, क्योंकि KPK में एक भी डिजिटल सिनेमा नहीं है। KPK में फिल्म बनाने के लिए, चलाने के लिए आपको वो रीलों वाले फिल्में बनानी पड़ती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैंने डिजिटल फिल्म बनाई है तो मैं उसको रील पे लेके आऊं। सो मेरी फिल्म सिंध के रेवर के भी सेंसर बोर्ड से क्लियर हुई थी, पंजाब के सेंसर बोर्ड से भी क्लियर हुई, सिनेमाज में चलनी शुरू हो गई, नेशन वाइड चली, क्वेटा में भी चली। 19 दिन सिनेमा में चलने के बाद मेरी फिल्म पहले सिंध ने बैन हुई, बैन नहीं हुई, पहले दिन मुझे वो आया, एक फोन आया कि जी आपने इसमें वर्ड CM यूज किया है तो ये गलत है, हमें ये नहीं पसंद, आप ये हटा दें नहीं तो हम आपकी फिल्म रोक देंगे सिनेमाज में से। दिस वॉज 19th डे दैट द मूवी वॉज ऑलरेडी इन सिनेमा एंड ड्रॉइंग ह्यूज क्राउड्स। मैंने वो फिल्म उसी वक्त एडिट करवाई और उसमें जहां भी वर्ड CM आ रहा था उस पर हमने वो बीप लगा दिया, वो जाहिर है मुझे अंदाजा था वो और ज्यादा मजाक खेज हो गया, जब तो सिनेमाज में चली तो वहां पर जब CM का लफ्ज आता था तो बीप हो जाता था, जिस पे उन्हें शायद मजीद गुस्सा था। फिर उस दिन अगले दिन मेरी फिल्म मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद में नेशन वाइड बैन कर दी, जो कि सरासर गलत फैसला था। परवेज रशीद साहब उस वक्त इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे। गलत फैसला इसलिए नहीं था कि उसने कोई, मैं ये कह रहा हूं कि पहली तो बात यह है कि जब 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स वफाक से बिल्कुल ले लिए गए थे, और ये जो इन्फॉर्मेशन और सिनेमाज वाला जो 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 सब्जेक्ट है ये वफाक का सब्जेक्ट ही नहीं था। तो अब वफाकी वजीर जो मर्जी उसका ख्याल हो फिल्म के बारे में उसको बैन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोविंशियल ज्यूरिस्डिक्शन थी। सो प्रोविंसेस ने जब उसे अप्रूव किया हुआ तो आप उसको नहीं रोक सकते। तो आप इस्लामाबाद की हद तक शायद रोक सकते हैं, लेकिन आप बाकी किसी जगह पर नहीं रोक सकते। लेकिन जाहिर है ये उल्टी गंगा बहती है। परवेज रशीद साहब ने फिल्म जनाब तमाम सिनेमाज में बैन कर दी। मैं जाहिर है उसके बाद कोर्ट्स में गया था। कोर्ट्स में आपको पता है कि पाकिस्तान में टाइम इतना लग जाता है कि फैसले का कोई फायदा नहीं होता। इट टुक मी अबाउट एन ईयर। पहले मैं सारी हाई कोर्ट से जीता, पंजाब हाई कोर्ट से भी जीता और सिंध हाई कोर्ट से भी, और यही फैसला आया कि जनाब आप होते कौन है। देखिए बात यह है कि ये कोई बादशाहत तो नहीं है ना। मतलब मैंने फिल्म बनाई है, कानून के मुताबिक बनाई है। आपने जिन सेंसर बोर्ड से कहा मैंने उन्हें पेश किया, उन सेंसर बोर्ड्स ने उनको अप्रूव किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकेकार के मुताबिक सिनेमाज में डाली है। अब ये थोड़ी है कि एक दिन आपको ख्याल आए कि यार ये मुझे नहीं पसंद तो इसलिए ये फिल्म बैन की जाती है। भाई आप कौन है? आप कानून के तहत ही बात करेंगे ना, तो फिल्म और आपके पास तो ये कानूनी इख्तियार ही नहीं है। और वही हुआ, मतलब कोर्ट्स ने भी यही अल्टीमेटली फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पाकिस्तान में फैसला दिया कि जनाब वफाक के पास या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है, आप कैसे फिल्म बैन कर सकते हैं। सो दीज आर दी एक्चुअल फैक्ट्स। अब मतीउल्लाह जान साहब, अब ये देखिए, मतलब इसमें जो हाउ इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, मतीउल्लाह जान साहब का क्या मानना यह है कि पाकिस्तान में इजहार राय पे जी बड़ा बस प्रॉब्लम है, और इजहार राय जो है उस पर हुकूमत रोकती है, और इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है, और वो जमहूर के और कानून की बालादस्ती के चैंपियन है, ठीक है जी। अब और वो फरमा क्या रहे थे, किसी ने मुझे उनका ट्वीट भेजा, मैंने फिर उस ट्वीट का जवाब भी उन्हें दिया। तो वो उसमें कहते ये हैं कि जी ये फिल्म आईएसपीआर ने बनाई थी, आईएसपीआर ने वो फिल्म कभी नहीं बनाई थी, वो मेरी फिल्म है, आप मुझे सेंसर बोर्ड में मेरे नाम पे है, हर जगह वो फिल्म मेरे नाम पे है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मतीउल्लाह साहब का कोई ख्याल है कि ये फिल्म आईएसपीआर ने बनाई थी तो मुझे एक कागज एक कुछ दिखा दें। फिर उन्होंने कहा जी ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैं आपके सामने बैठ के अभी भी कह रहा हूं, इस बात पे कायम हूं कि उस फिल्म में न एक लफ्ज आईएसपीआर के कहने पर डाला गया, न एक लफ्ज आईएसपीआर के कहने पर निकाला गया, न आईएसपीआर उसमें इंटरफेयर कर सकता था। इट वाज माय फिल्म, आई वाज द राइटर, आई वाज द डायरेक्टर, आई वाज द माय वाइफ वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ठीक है जी। सो इट वॉज प्योरली अर ओन फिल्म एंड आईएसपीआर हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद इट। मैं उस फिल्म मैंने लिखी, मैं उसका उसके स्क्रिप्ट पे आज भी कायम हूं। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि जी उस फिल्म के नतीजे में मैं फिर पाकिस्तान छोड़ के मुझे जाना पड़ा, भागना पड़ा। मतीउल्लाह जान साहब को मालूम नहीं है मैं 2004 में कनाडा इमिग्रेट कर चुका हुआ था अब, और फिल्म 2016 में रिलीज हुई। तो बात यह है कि जब आपका की राय ये हो, आप कहते हो कि जी इजहार राय पे, अच्छा फिर मतीउल्लाह जान ने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि जी फिल्म इतनी बुरी थी और मुझे इतनी बुरी लगी कि मैंने शेख रशीद साहब को फोन किया और
रशीद जिन्होंने रुकवाई की थी,
नहीं सॉरी शेख रशीद नहीं, वो क्या नाम, परवेज रशीद को मैंने फोन किया और मैंने कहा कि जी ये फिल्म बैन होनी चाहिए, बल्कि इन पे तो इंक्वायरियां होनी चाहिए कि ऐसी फिल्म कैसे बनती। अब मुझे आप एक बात बताइए,
मगर एक तरफ यहां पे मैं एक सवाल
पूछ, ये जुमला मुझे कंप्लीट कर ले। एक तरफ मतीउल्लाह जान साहब का ये कहना है कि इजहार राय बिल्कुल फ्री होना चाहिए, दूसरी तरफ उनका यह ख्याल है कि अगर मैंने कोई फिल्म बनाई है तो ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, इसे बैन होना चाहिए और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे भाई मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए, क्या इजहार राय पे कोई कैद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि जो आप कहें वो तो इजहार राय है, उस पर कोई कैद नहीं होनी चाहिए, आप जो मर्जी कहें भले आप झूठ बोल रहे हो, और अगर मैं कुछ कहूं जो आपको ना पसंद आए तो वो इजहार राय पे तो बैन होना चाहिए, बल्कि उस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मतलब मुझे समझ नहीं आई कि ये किस किस्म का इजहार
है। यहाँ उन्होंने कन्फेस किया है अपने स्ट्रीट में कि मैंने परवेज रशीद साहब को कांटेक्ट किया कि इस फिल्म को बैन होना चाहिए, और आप कहते हैं कि परवेज रशीद साहब ने किया था, हालांकि ये फेडरल के अंडर नहीं आता, आपकी प्रोविंशियल से अप्रूव हो गई थी। तो दिस मीन वट एवर परवेज रशीद डिड, तो ये वही सहाफी जो उन लोगों के पेरोल पे थे, काम करते थे, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि उनको वो पसंद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान का हर वडेरा औरतों के साथ यही सलूक करता है, एवरी वडेरा डज द सेम।
आरफा जी, इनके कहने पे तो नहीं किया था, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो नाहिद शाह हैं, जो कायम अली शाह की साहिबजादी हैं, वो गई थी और उनके साथ पीपल्स पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन था। ये लोग शाम को उनसे मिले थे, परवेज रशीद साहब से, और वहां पे इन्होंने ये मुतालबा पेश किया था और परवेज रशीद साहब ने इनसे अग्री किया था। मेरा ये ख्याल है कि दे वर सिंपली ओवर रिएक्टिंग। आधे लोगों ने तो आपको पता है फिल्म देखी नहीं थी, और मतलब जो
हवाले से दे आर वेरी ऑफेंडेड।
हाँ जी, अब मसला ये है कि आप जैसे मतीउल्लाह जान साहब ही का एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, कि आप जीते जागते लोगों पे तो सरन झूठ बोल रहे हैं, और ये इजहार राय है आपका और ये इसका आपको हक है, आप कहते हैं। और अगर मैंने एक फिल्म बनाई है जो फिल्म शुरू ही यहां से होती है कि ये तमाम इसमें जो किरदार हैं ये फर्जी हैं, और किसी भी शख्स से मुनासिबत जो है ये महज इत्तफाकिया है, तो मैं तो अपने ही फिल्म के बनाए हुए फिक्टिशियस किरदारों पे भी बात नहीं कर सकता, मुझे ये इजहार राय का हक नहीं है। लेकिन आप जीते जागते लोगों के बारे में झूठ भी बोल सकते हैं, और ये आपका इजहार राय का हक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इजहार राय हर शख्स का क्या अपना अपना डिफाइन करना होगा। और यही वो हिपोक्रेसी है कि जनाब मुल्क आगे नहीं चलता, क्योंकि जब मेरी बारी आती है तो इजहार राय का स्टैंडर्ड फर्क हो जाता है, जब आपकी बारी आती है तो इजहार राय का स्टैंडर्ड फर्क हो जाता है, जब और आपने जैसा जिक्र किया दुनिया ही आजकल ऐसे चल रही है। मतलब आई वाज शॉक्ड, जेडी वैंस साहब की ट्वीट देख रहा था मैं, जिस पे किसी ने उन्हें कहा है, जब उन्होंने वेनेजुएला के किसी जहाज पे बम मारा है तो 11 वेनेजुएलन हलाक हुए, तो किसी ने उनसे कहा कि जी बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी सबूत के, आपने किसी दूसरे मुल्क के सिविलियंस को बम मार के मार दिया, तो ये तो वॉर क्राइम है। तो उसने उनका जवाब दिया कि नहीं जी, ये लोग तो ड्रग्स में थे, इन्वॉल्व थे, और ये अमरीकियों को मारते हैं और ये करते हैं। तो उसने कहा जी कोई सबूत, कोई अदालत, कोई कुछ, और अगर बगैर किसी ट्रायल के आपने इस तरह के 11 लोग मारे हैं तो इसी को तो वॉर क्राइम कहते हैं। वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको क्या कहते हैं, लेकिन सिविलियंस हमने मारे, हमने अच्छा किया। अब ये अगर वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे ये बात है, हम मेरा छोटा सा सरकारी दफ्तर होता था, हम हर बात करने से पहले पब्लिक में 20 दफा सोचते थे कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या मतलब लिया जाएगा, क्या गवर्नमेंट ऑफिस का ये डेकोरम है कि वो इस तरह की बात करे या ना करे। जिस दिन मैं रिटायर हुआ मैंने बड़ी आजादी फील की, क्योंकि उस दिन के बाद से मैं अपनी मर्जी से बोल सकता था। अदरवाइज तो गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है वो तो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव होता है, उसका एक डेकोरम होता है, और ये साहब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, अब अंदाजा लगे पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं।
वेरी सैड, वेरी सैड, मगर दिस इज ऑल व्हाट इट इज। मतीउल्लाह जान साहब भी जो हैं, और मैं पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट के बारे में कहती हूँ, बल्कि कल चंद एक जर्नलिस्ट तो अपने आप को हजरत ईसा अलैहि सलाम के वो जो आप पता है लास्ट डिनर जो उन्होंने किया था ईसा अलैहि सलाम के साथ, उनमें से शामिल कर रहे थे। आई वाज सरप्राइज कि क्या क्या कहावतें हैं। बहरहाल ISPR की एक बहुत बड़ी गलती है, उनको चाहिए था हुकूमतों को बर वक्त तक काम करने देते तो शायद लोग 2022 की जब सूरत हाल याद करती हूँ दैट इज के लोग क्या क्या सूरत हाल थी। एनीवेज ये तो एक बात हो गई, और पाकिस्तान के जरिए इस वक्त आपकी फिल्म के बारे में तो सर बड़ी ले दो, पीपल हैव नथिंग एल्स टू से दे आर ओनली, बट ISPR आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। मैं आपके साथ बल्कि शेयर की देती हूँ, जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अपने बाद के व्यूअर्स के लिए इस चीज को पोस्ट कर दें कि मतीउल्लाह जान साहब ने बाकायदा इस फिल्म को जो है वो रिलेट किया है जनाब आईएसपीआर के साथ। उन्होंने कहा है आईएसपीआर की फिल्म मालिक की अदलिया में नुमाइश जारी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यही अफरीदी की तरफ से जजों की छुट्टियों पर स्टैंडिंग ऑर्डर, और उन्होंने जो कुछ भी इस फिल्म के बारे में बात किया, हालांकि अशर अजीम साहब यहां पे हैं, दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन। सर एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जब भी जर्नलिस्ट की बात करती हैं और झूठ और सच की बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, दिस वीडियो इज शोन इन इंग्लैंड, सेंट थॉमस हॉस्पिटल है जहां पे ये फिल्म दिखाई गई है। आई होप कि आपने पता नहीं इसको देखा है कि नहीं देखा, और ये फिल्म जो है बहुत बड़ी दीवार जैसे सेंट थॉमस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी दीवार के ऊपर, और इसकी ऑडियो फुल लाउड थी। आई होप वी कैन मेक इट लाउड एंड क्लियर। आप इसको जरा सुनिएगा, आमिर अगर इसकी आवाज नहीं आती तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। अच्छा, अब उन्होंने ये कहते हैं कि इंग्लैंड जो है वो पैसा दे रहा है नए लाइसेंसेस के लिए, अक्टूबर 2023 से बेशुमार पैसा दिया उन्होंने गजा में। दिस इज नॉट न्यूट्रलिटी, दिस इज अ कम्प्लिसिटी। और ये फिल्म जो है उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, सैंक्शंस कर रहा है, फ्री पैलेस्टाइन नाउ। अब ये चली इंग्लैंड के सेंट थॉमस हॉस्पिटल के ऊपर ये फिल्म चली है, और इस फिल्म में जो आवाज है जूलियट स्टीवनसन की है, एडिटेड बाय अहमद अल तरबियली जो है, रिटन बाय डॉक्टर उमर, उन्होंने लिखी है। आप इसको जरा सुनिएगा और फिर मैं आपसे बातचीत करती हूँ आज यरूशलम फिल्म के हवाले से।
Imagine your city under siege. Foreign tanks roll through your streets. Fire rains down from above. Drones, airstrikes, F-16s. Imagine waking up to the sound of missiles. You run for shelter, but there is none. Not your home, not the hospital, not your child's school. Nowhere is safe. Imagine the last hospital in your city, overwhelmed with the wounded. Then an airstrike reduces it to rubble. Doctors, nurses, children, newborns, all buried beneath. Imagine your doctors standing outside the ruins, begging the world to listen, but the world ignores them. Imagine your pregnant wife forced to deliver without pain relief, without a midwife, without clean water. Imagine your sister's premature baby left to die because there are no incubators, no electricity, no medicine. Imagine your metro stations are turned into makeshift shelters, overcrowded with refugees and orphans. Imagine your nephew pulled from the rubble, alive, but orphaned. He doesn't speak for months. Imagine nurses and medics forced to flee their hospitals, only to be arrested, blindfolded, and disappeared. Imagine your entire family found buried in mass graves, months after they disappeared. Imagine your home reduced to ash. You survive in makeshift tents during a freezing winter. Your city turned to a graveyard. Then, after 16 months, the bombing stops. You and 2 million others walk back, searching for what's left. Imagine spending 42 days living in the rubble of your former home, only for the so-called ceasefire to collapse, and the violence begins all over again. You do not need to imagine. This is not fiction. This is Gaza. And while the bombs fall on Gaza, Britain supplies the weapons. The UK has approved over £570 million in arms sales to Israel since 2008, including key parts for F-35 warplanes used to strike Gaza. British-made components make up 15% of every Israeli F-35. These jets were used relentlessly in the assault on Gaza. In May, hundreds of UK lawyers, including former Supreme Court judges, warned the UK government that it is breaching international law. And yet, arms sales continue. 108 new licenses have been granted since October 2023 alone. This is not neutrality. This is complicity.
ये वो वीडियो है जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल के बाहर दिखाई गई है और आप जिन लोगों ने देखा है अगेन मैं आपसे ये कहती हूँ कि इसमें जो आवाज है जूलियट सेवनसन की एडिटेड बाय अहमद अल तरबे अली जो है उनकी रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर उमर उन्होंने इसको जूलियट सेवनसन ने उनके साथ प्रोडक्शन की है और अब सर इंग्लैंड में उसमें बाकायदा उन्होंने फिगर्स दे दिए हैं कि इंग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है असले के लिहाज से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उनको ड्रोन्स वगैरह देने में और व्हाट एवर इसराइल इज डूइंग इज बैक्ड अप बाय वेस्ट एंड यूरोप दे डू टॉक अबाउट बच्चे और बूढ़ों के बारे में खवातीन के बारे में बात करते हैं व्हेन दे टॉक इन यूक्रेन बट जब वो गजा की बात करते हैं तो दे ओनली से के इसराइल इज राइट इवन गजा के जो जर्नलिस्ट जो कि वहां अल जजीरा के साथ काम करते हैं रेनाउंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ उनको भी लिंक किया गया हमास के साथ सो दुनिया इज सो पोलराइज्ड के G7 के कंट्रीज जो हैं उनमें भी सहाफत इस हद तक है कि दे आर डूइंग प्रोपेगंडा व्हाट दे वांट हाउ व्हाट वुड यू से हाउ कैन वी लिव इन दिस वर्ल्ड
मतलब आप सोचे ना कि ये वीडियो देख के इंसान का दिल फटता है और आप ये देखें कि यही यूके है जिसमें पैलेस्टीनियन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेरा ख्याल है उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और इन्होंने कल मैं देख रहा था कि एक ब्लाइंड व्हीलचेयर पे जो आदमी है जो पैलेस्टाइन की सपोर्ट में निकला हुआ था एक तरह से तो खैर मैं गोरे को सपोर्ट भी करता हूं मैं पता नहीं हमारे ममालिक में तो लोग नहीं निकलते उनके इर्द-गिर्द जो मर्जी भी हो रहा हो लेकिन कम से कम गोरा निकल रहा है और पैलेस्टीनियन के लिए निकल रहा है और अरेस्ट हो रहा है
ग्रेटर सैंडबर्ग की बात कर लें कि अपने एक से ज्यादा जहाज लेके अब फिर निकली है मुसलमान सारे सोए पड़े हैं बट शी इज गोरा पाजी फैमिली से एंड शी हैज टेकन सो मेनी पीपल जस्ट फॉर द अवेयरनेस कि अगर हमें अरेस्ट भी कर लिया गया बट एटलीस्ट हम दुनिया को इन्फॉर्म तो करेंगे व्हाट इज हैपनिंग विद द चिल्ड्रन एंड द वुमेन
जी आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में देखें यंगस्टर्स ने जिनके जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे उन्होंने अपने करियर्स तबाह कर लिए लेकिन ये बात उन्होंने की है कि हम जिस चीज पे लॉजिकली लीगली कन्विंस्ड हैं हम उस पर खड़े हैं और गवर्नमेंट्स का सीवियर प्रेशर है उसके बावजूद वो लगे हुए हैं लेकिन अब इससे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं क्या ये जमहूरियत है जहां पर अवाम की तो फीलिंग्स और हैं और खुले आम और हैं लेकिन इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि लीडरशिप किसी और एजेंडा पे जहां पे हम कहते हैं हम पाकिस्तान को रोते थे कि इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे हैं तो ये साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका में भी अब उसके हुक्मरान अवाम के मुकर्रर करदा और अवाम को जवाब देने हैं ये यूएस में भी नहीं है ये यूके में भी नहीं है ये जर्मनी में भी नहीं है जर्मनी में आप देखें कितने लोग निकल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा था मास लोग निकले थे इराक वॉर में लेकिन ऐसी जमहूर ये कैसी जमहूर है जिसमें अवाम की सुनता ही कोई नहीं और अवाम कंटिन्यूसली अमरीका में गरीब होती जा रही है सड़कों पर आ गई है ठीक है जी लेकिन जो 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 बिलियनर क्लास है जो ओलिगार्की है वो वो अमीर से अमीर तर होती गई है। तो ये जब हम कहते हैं कि जी, मुझे तो अब ये लगता है कि ये जो मैंने मालिक टाइप चीज बनाई थी, ये भी शायद हम जब तक वेस्ट में आए नहीं थे तो ये आइडियलिज्म या ये हमें रबिश। कनाडा अभी तक बहुत अच्छा मुल्क है और इस वजह से नहीं कि मैं यहां पे हूं तो ये कह रहा हूं, लेकिन अभी तक कनाडा में इस तरह आपको चीजें नजर नहीं आई होंगी। पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन यहां पर तो मतलब आप यूएस में देख रही हैं किस तरह लोगों को उठाया जा रहा है बगैर आईडी दिखाए, बगैर।
सर जी नहीं, आप देखिए जरा, नया सिस्टम आया है, आईस है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का इदारा, आईस की ये मैं आपको एक दिखाने लगी हूँ। नाउ तमाम मीडिया पर्सनल्स को भी ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये फॉर्म आया है, एंड आई थिंक दे आर सेंडिंग दिस फॉर्म टू एवरीबॉडी। ज़ाहिर मैं इस ग्रुप में हूँ तो मुझे आईस की तरफ से ये आया है। उन्होंने कहा है कि यूएस इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन मोर देन 400 वायोलेशन क्रिमिनलेशन। ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट की अमेरिका की गवर्नमेंट है, उनकी इन पे प्रेशर है कि आप रोज के 3000 बंदों को अरेस्ट करें नो मैटर व्हाट। ये एक आज अदालत में केस डोनाल्ड ट्रंप के हक में चला गया जिसमें आईस के लोग जो थे बस शेल्टर्स में और डिफरेंट जगह पे लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज लॉ किया है कि ट्रंप की जो आईस रेड्स हैं वो बिल्कुल जारी रहें। ये नंबर कहा जाता है कि अमेरिकन्स को ये है, आज एलॉन मस्क के बारे में भी बात हुई है कि इनको ये है कि अमेरिकन्स की तादाद, गोरों की तादाद कम होती जा रही है, एंड दिस इज अ थ्रेट विच इज मेकिंग देम टू टेक ऑल दीज एक्शंस।
हाँ जी, इलॉन मस्क का मैं आज ट्वीट देख रहा था, आज तक कल था जब उसने किया था कि जी पहले दुनिया में व्हाइट्स की पॉपुलेशन 38% होती थी और अब मेरा ख्याल उसने लिखा है कि 8% रह गई है या 6% रह गई। तो भैया इसमें हमारा कसूर है। और ये शख्स इतना रेसिस्ट है, मतलब आई यूज टू थिंक क्वाइट हाईली ऑफ दिस पर्सन कि यार ये बड़ा एंटरप्राइजिंग है और पता नहीं बड़ी क्या क्या चीजें बना रहा है, लेकिन हिज रोल इन टर्म्स ऑफ साउथ अफ्रीका, हिज रोल इन टर्म्स ऑफ फैनिंग राइट विंग गवर्नमेंट। मैंने तो एक साइबर ट्रक बुक करवाया हुआ था, वो तो मैंने कैंसिल करवा दिया है।
चलाते हुए देखती हूँ, मैं कहती हूँ व्हाट अ काइंड ऑफ सिलेक्शन दे है।
हाँ जी, तो मतलब जो आप ये देखेंगे और क्लियरली साउथ अफ्रीका की जो अपार्टहाइड टाइप की गवर्नमेंट्स थी, जो अपार्टहाइड टाइप की उसकी इलिटिस्ट वाइट्स की फॉर्म थी, मतलब एलॉन मस्क उसी बैकग्राउंड का आदमी है, उसी में इसकी फैमिली थी, इसको अभी भी साउथ अफ्रीकन से इसीलिए नफरत है, ये एक रेसिस्ट आदमी है, और ये सारे मिलके एक डायरेक्शन में। और खुद अगर भाई आप दुनिया के 8% लोग हो ना जी, तो ये 8% लोग आप कर क्या रहे हो, बाकी 92% लोग तो, लेकिन अब उन 92% पे भी रोने का मकाम है कि भैया
कॉम्प्रोमाइज अ लॉट, दैट 92% इज कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट।
Their leadership is compromised. I mean, the people are never compromised. देखिये वो तो मैं अंग्रेज के भी एंटी बात नहीं करता। देखिये ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग निकले गाजा के लिए, आपने वो ब्रिजेस की हालत देखी थी, इराक वॉर में जितनी वेस्ट में लोग निकले, इस वक्त भी ग्रेटा थनबर्ग के साथ जितने लोग होंगे वो गोरे होंगे। सो मैं ये कतन नहीं कह रहा कि जनाब व्हाइट एज अ रेस उनमें कोई प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता कि यहूदी एज अ मजहब उनमें कोई प्रॉब्लम है। आप उनमें से देखें, उनके बहुत सारे लोग हैं जो कि इसराइल की हरकतों के खिलाफ हैं और जो ठीक, लेकिन दुनिया में एक सेलेक्ट ओलिगार्क्स का ग्रुप है, बिलियनर्स की एक क्लास है जिसके हम गुलाम हैं।
इट इज अराउंड द वर्ल्ड नाउ। आज मकबूजा, यानी आप देखिएगा बरतानिया की दीवारों के ऊपर, जिसमें बरतानिया कितना सपोर्ट कर रहा है, वीडियो चल गई और मुसलमान ने उसको बनाई है, गोरे की आवाज है। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 11 जख्मी, दोनों हमलावर जो है मारे गए हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस, کے یہ ظلم اور بربریت ختم بھی ہوگی کہ نہیں؟
پہلی تو بات یہ ہے کہ جی مجھے تو اس پہ ہی یقین نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا. دیکھیں اب تو یہ میں نہیں کہہ رہا, اب تو آپ امریکن فار رائٹ میڈیا سن لیں, اس کے انفلوئنسر سن لیں, ٹکر کارلسن سن لیں, جتنا ان کا فار رائٹ میڈیا الیکس جون سن لیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کینیڈی کو کس نے مارا تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مافیا نے مارا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9/11 سپٹمبر 11 کس نے کروایا. یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ سعودی عرب یا مسلمانوں نے یا وہ جہازوں کے گرنے سے گئے تھے. سو بات یہ ہے کہ اب تو مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ جو 16 افراد وہاں پہ حملہ آور ہوئے یا فلانا, دونوں جی حملہ آور مار گئے اور فلانا ہوا, آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ یہ کس نے حملہ کروایا. انہوں نے خود کیا اپنی اس جو ان کے خلاف تمام دنیا میں لوگ اینٹی ہوئے ہیں اپنی اس کیمپین کو بوسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ سپٹمبر 11/2001 تمام دنیا پہ چڑھ دوڑنے کی ایکسکیوز تھی, عراق پہ چڑھ دوڑنے کی ایکسکیوز تھی, افغانستان بیچارے نے کیا کیا تھا سپٹمبر 11 میں, لیبیا نے کیا کیا تھا سپٹمبر 11 میں, عراق نے کیا کیا تھا سپٹمبر 11 میں.
ایک اور چیز سر, میں ایلان مسک بیچارہ صحیح روندا ہے کہ 8% رہ گئے. آج برطانیہ کے جو وزیر اعظم کیئر سٹارمر اپنی کابینہ میں رد و بدل کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہے, اور فلسطین کی حمایت سے سخت ایکشن تک پاکستانی نے یاد, شبانہ محمود جو برطانیہ کی وزیر داخلہ بننے والی پہلی مسلمان خاتون ہیں. اچھا اس پہ ایلان مسک کو بڑی درد ہوئی ہے, اس سے پہلے جو خاتون تھی اس پہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی, ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے تھے.
ہاں جی, سویلا بریورمین جو تھی, مطلب اگر آپ کو یہ پرابلم ہے کہ یہ براؤن خاتون ہے اور یہ وائٹ میں کیسے سیکرٹری ہوم بن گئی, تو بھیا سویلا بریورمین تو انڈیا سے تھیں. سو اگر آپ کو تو آپ کو پرابلم کیا ہے, اگر آپ کو خاتون سے پرابلم ہے تو سویلا بریورمین بھی خاتون تھیں اور یہ شبانہ محمود صاحبہ بھی خاتون ہے. اگر آپ کو ساؤتھ ایشین سے پرابلم ہے تو وہ بھی ساؤتھ ایشین تھیں, یہ بھی ساؤتھ ایشین ہے. اگر آپ کو نان کرسچن سے پرابلم ہے,
نہیں نہیں ایک سوری ٹو انٹرپٹ یو, جب وہ بنی تھی نا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستانی مردوں کو, اس زمانے میں ایک خاتون کا کیس چل رہا تھا جس میں اس آدمی کی سیکنڈ میرج تھی اور اپنی بچی کو مارا تھا, اس نے کہا تھا پاکستانیوں کے حوالے سے بڑا بیڈ, اس نے ایک اور مسلمانوں کے لحاظ سے بیڈ ٹویٹ کیا تھا, تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ انڈینز آر. مگر یہ جو مس محمود ہیں ان کے بارے میں تو ہی از ویری نیگیٹو.
تو وہی میں نے کہا نا کہ بھیا وجہ کیا ہے, اگر خاتون کی وجہ نہیں ہو سکتی, ساؤتھ ایشین کی وجہ نہیں ہو سکتی, نان کرسچن کی وجہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری ویسٹرن ویلیوز, تو بھیا یا ہماری وائٹ ریس کم ہونا یا ویسٹرن ویلیوز کا کم ہونا, تو سویلا بریورمین نہ وائٹ تھیں نہ آپ کی ویسٹرن ویلیوز کی تھیں, وہ انڈین اوریجن کی خاتون تھیں. اگر آپ کا کہنا ہے ویسٹرن ریلیجن کی نہیں تھیں تو وہ بھی ہندو بھی تھیں اور جوش بھی تھیں, ٹھیک ہے جی. تو شبانہ پہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم تو بیسیکلی آپ کا ریلیجن کا ایشو ہے کہ جی اس کا مذہب کیوں یہ ہے. سو آپ کو کرسچینٹی سے آپ کی ہمدردی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی ہندو ہو سکتی ہے, جوش ہو سکتی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مسلمان نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو تو کوئی مسلمانوں سے پرابلم ہے, آپ کو کرسچینٹی یا ویسٹرن ریلیجن کی تو آپ سپورٹ کی بات ہی نہیں کر رہے. سو اور وہ کیا پرابلم ہے؟ وہ پرابلم سارے اللہ ہی جانے کہ
اللہ ہی جانے کون بشر ہے. آئیے صاحب ایک دفعہ پھر سے میں پاکستان لے کے جانا چاہتی ہوں. آج ایک جرنلسٹ نے, اگین متی اللہ جان صاحب بھی بیچ میں آ جائیں گے, بہت سے لوگ آ جائیں گے, آپ فیور کرتے ہیں ایک پارٹی کی, میری ریکویسٹ ہے کہ میں کسی پارٹی کو نہ انڈورس کرتی ہوں, نیدر پیڈ اینڈ کورڈ بائی دا اینی پارٹی, آئی لو پاکستان اینڈ دیٹس اٹ پیریڈ. آج اگر ایک انسان نیکی کا دعویٰ کرتا ہوا اور صرف اسے کچھ بھی اور سوال نہیں پوچھا جائے, اس سے سوال یہ پوچھا جائے کہ بھئی امریکہ کی جو جائیداد ہے اس کے حوالے سے, تو کچھ لوگ ڈنڈے برسانا شروع کر دیں ایک صحافی کو, آپ اس سوال کو پاس کر سکتے ہیں اور وہ آدمی کہتا ہے مارنے والے بھی ورکر تھے, کارکن تھے, اور بچانے والے بھی کارکن تھے. یہ لوگ اتنے بالکل آؤٹ آف دیئر مائنڈ کیوں ہو گئے ہیں کہ اپنے लीडर को, और वो कोई भी पार्टी हो सकती है, दैट कैन बी, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी थोड़ा वाइजली चल रही है, मगर मुस्लिम लीग नून वाले भी कुरान की आयतें लगा के अपने लीडर को लगा रहे हैं, पीपल्स मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ वाले भी कुरान की आयतों के साथ ही, खुदा का बंदो बंदिया बंदा रहन दो, कुरान कुरान रहन दो, कोई खुदा का खौफ करो जी। सर
देखिए आप बात कर रही हैं अलीमा खान साहिबा वाला वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आदमी ने इनसे पूछा है किसी रिपोर्टर ने कि जी मैडम आपने अपनी अमेरिका वाली जायदाद क्यों नहीं दिखाई, तो उसको जाहिर सब ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया। और मैडम की आवाज आ रही है बीच में अलीमा खान साहिबा को, अगर आप सुने तो वो कहती हैं ऐसे आदमी को आपने आने ही क्यों दिया। सो अब मेरा सवाल यह है कि वो ये वही मतीउल्ला जान वाली बात है ना, और मेरी जो वो मेरे हवाले से करा था कि आप जो कहें वो ठीक है, वो आजादी इजहार राय है, कोई दूसरा अगर कुछ कहे, ये ISPR के जनरल से कोई टेढ़ा सवाल होता और फौजी पकड़ के एक उसको मारना शुरू कर देते कि तूने हमारे जर्नैल से ऐसा सवाल क्यों पूछा, तो आप यकीन करें ये मैंने आज तक होते नहीं देखा। सो जिनको जो डिक्टेटर हैं पाकिस्तान में, जिसको आप कहती हैं फौज है फलाना है, आपने आज तक देखा है कि किसी शख्स फौजी से कोई भी सवाल किया गया हो तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारे हो या उसको मारा हो, पीटा हो,
उठा के तो ले जाते हैं
नहीं उठा के तो बाद में लेके,
मगर वो एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको एक एक पॉलिटिशियन ये कुछ करता फिरेगा, पता आपने जो झूठ बोला है शर्म तो कर लो थोड़ी सी, कि भाई अगर आपकी जायदाद थी और आपने डिक्लेयर नहीं की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स पार्टी एंड वाई पार्टी एंड जेड पार्टी, यू आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर यही इतना सही सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपनी जायदाद आपने डिक्लेयर क्यों ना की, राधर देन सेइंग कि ऐसे बंदों को आपने आने क्यों दिया, दैट वॉज रॉन्ग
जी। आई मीन आप चलें बड़ी बात है आप ना दें जवाब, लेकिन आप लोग उस पे अब आपकी आजादी राय कहां गई और फलाना क्या हुआ। और मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था, लोग मुझे जब मैंने एक दो वीडियोस किए उस पे अरशद शरीफ की डेथ पे एक वीडियो मैंने किया, फैक्चुअली बिल्कुल मैं आई स्टैंड विद इट, बिल्कुल ठीक वीडियो है, आप उसे देखें। मैं आज भी और आपको कोई एविडेंस नहीं मिली कि वो ISI ने कत्ल करवाया, दैट वॉज एन एक्सीडेंट एंड आई एम कन्विंस्ड, और मैंने बड़ी लॉजिकल बात की थी लेकिन लोग मेरे पीछे पड़ गए। ये मुझे याद आती है बात, और मैं किस तरह मैं थोड़ा सा डिफरेंट होना शुरू हो गया, PTI से चिढ़ना शुरू हो गया, दूसरी तरफ जाना
मैं भी
चिढ़ी हूं शेयर कर
बात से। एग्जैक्टली
जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये शुरू तब हुआ जब 2013 में मैं कराची में पोस्टेड था, बता रहे हम सारा दिन कस्टम हाउस में होते थे ऑफिस में, शाम को 6-7 बजे हम घर पहुंचते थे, इलेक्शंस का दौर था, नया शुरू था, मैं DHA में रहता था CPU पे, मेरे घर से थोड़ी सी सामने समंदर था, वहां पे तंबू कनातें लगी हुई थी PTI की, और उसमें वो ऊंचे ऊंचे गाने लगे हुए थे। जब मैं एक दिन शाम को 7 बजे घर आया था, पहले तो मुझे हैरत हुई क्योंकि किसी भी DHA में इस तरह तंबू कनातें लग के और बड़े बड़े लाउड स्पीकर लग के इस तरह नहीं हो सकता, वहां तो आप कैमरा निकालें ट्राईपॉड निकालें हल्के से कोई भी बात करें तो फौरन वो DHA के जो हैं लोग आ जाते हैं और वो आपको पकड़ लेते हैं कि भाई तू कैसे विदाउट परमिशन शोर कैसे मचा रहे हैं हमारा रेजिडेंशियल एरिया। खैर कोई बात नहीं, इस मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी फाइन। शाम के 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 1 बज गया 2 बज गए 3 बज गए 4 बज गए उसी वॉल्यूम पर उसी तरीके से वो पता नहीं गाने पागलों की तरह लगे हुए थे एंड पूरी आबादी तंग थी, वी कुड स्लीप, घर में किसी ने बच्चे ने पढ़ना है, देखो कोई बीमार है, नो प्रॉब्लम, उस वॉल्यूम पे गाने लगे हुए। चले वो दिन गुजर गया, कल शायद ठीक हो जाएगा, एक दिन दो दिन चार दिन महीना दो महीने पता नहीं कितनी देर चलता रहा। एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि फौज पीछे खड़ी थी। एक दिन हफ्ते डेढ़ बाद मैं वहां चलता चलता सामने गया और रात के कोई 11-12 बज रहे थे, मैंने उस लड़के को कहा, एक या दो लड़के खड़े थे, और उसी तरह अपनी बदमाशी टोर में, जैसे वो आपने एटीट्यूड देखा था ना अलवी साहब का, वो जो थे जो हमारे प्रेसिडेंट बने हुए थे, कहां खड़े हैं तो किसी ने कहा जी वहां से पुलिस वाले आ रहे हैं, कहते हैं मैं अभी इनकी टांगे तोड़ता हूं, और सो एक अजीब बदमाशी टाइप का एटीट्यूड। मैं उस लड़के के पास गया अपने घर से निकल के, मैंने कहा भैया आज 10 दिन 12 दिन हो गए, आपने इतने जोर का ये म्यूजिक लगाया हुआ, इसको आप एक टाइम पर रात के 10-11 बजे बंद क्यों नहीं कर देते, 12 बजे बंद क्यों नहीं कर देते, आहिस्ता क्यों नहीं कर देते, पीपल लिव हियर। तो उसने जाहिर है मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया, आगे से लड़ना, आर्ग्यूमेंटेटिव। अभी आप क्या करें, अब मैं एक अकल की बात आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि आप किसी जोम में हैं, किसी बदमाशी में हैं, पीछे आपके साथ जनरल आसिफ गफूर की उस वक्त की पूरी फौज और बाजवा की और फैज हमीद की फौज आपके साथ खड़ी थी, ठीक है जी, जाहिर है नहीं तो डीएचए में आप कैसे कर सकते। उसके बाद जब मैंने एक आध बार फिर कहा तो मुझे खूब ये सुनाई गई कि जी आप तो चोरों के साथ मिले होंगे, आप होंगे ही चोर जो आप यहां आके कहते हैं कि जी आप हमारे साथ खड़े नहीं हैं और ये गानों को आप एंजॉय नहीं कर रहे। यार आप किस किस्म के लोग हैं, आपके साथ कोई शख्स कोई इखलाकी बात करे, कोई पते की बात करे, कुछ करे, आप वो सुनने को तैयार नहीं है, आपने ब्रांड कर लिया। जो शख्स आपको कहेगा कि यार ये आप गलत कर रहे हैं, आप कहेंगे आप चोरों के साथ मिले हैं। भाई मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मुझे ये तकलीफ है कि आप मेरे घर के सामने ये शोर मचाना बंद करें। ये मेरा भी उतना ही मुल्क है जितना आपका है, मुझे भी यहां पे सोने का हक है, मैंने भी सुबह दफ्तर जाना है, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, व्हाई डोंट यू जस्ट शट अप राइट। बट नो, इफ यू से दैट तो आप चोरों के साथ मिलने में, तो कुछ दिनों बाद आप कहते हैं यार मैं चोरों के साथ मिलना ज्यादा पसंद करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ जिंदगी में किसी सूरत नहीं मिल सकता क्योंकि मैं ये एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब आप मेरी भी एक कहानी सुन लीजिएगा। इमरान खान साहब जब आए तो एक डैम बन रहा था, वो एक साकिब निसार साहब लगे थे, तो मैं आपको अपने घर का वाक्य सुनाने लगी हूँ। माई ब्रदर इन लॉ वॉज इन वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट विद इमरान खान साहब, अल्लाह ताला मेरे बहनोई के जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने पैसे हमने इकट्ठे किए, मुजाहिदा काउंसिल जनरल को मैंने रिक्वेस्ट की, आज तक वो $10,000 भी दिया, ठीक, आज तक वो डैम नहीं बना। और जब इमरान खान साहब पाकिस्तान मेरे बहनोई गए और ही वांटेड टू जस्ट मीट हिम बिफोर दैट, हमने तो उन्होंने तो जो किया था वो सिर्फ इसलिए कि वी लव पाकिस्तान, अल्लाह करे वो कोई पता नहीं कड़ा डैम सी वो बन जाता, क्यों नहीं बना। खान साहब का नाम लेके साकिब निसार साहब को किया था, वी पेड मनी फॉर दैट एंड बहुत से लोगों ने पैसा दिया था, क्यों नहीं वो बना। यानी हर हुकूमत के दौर में, मेरा ये नहीं कि मैं उनकी 1001 अच्छी चीजें थी, मगर लोगों का पैसा तो तब भी चोरी हुआ था, कौन से दौर में लोगों का पैसा चोरी नहीं। मगर वही बात है, शायद हम इतने ज्यादा डसे हुए हैं कि हम किसी एक पे बहुत ज्यादा इनसार कर लेते हैं कि भाई शायद इन्हें पता नहीं मेरी किस्मत बदल देनी है। एवरीबडी विल सेल कुरान, एवरीबडी विल सेल हदीस, और दैट कुड बी एनीबडी, ऑल पार्टीज आर प्लेइंग दीज गेम्स, दिस कंट्री इज इट बिलोंग्स टू ओलीगार्क्स, इट बिलोंग्स टू गद्दी नशीन, और इट बिलोंग्स टू वडेराज। सर आपका बहुत
ओके अग्रीड, बट अ लिटिल बिट ऑफ डिसएग्रीमेंट। सो आई लिव्ड इन पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली मतलब मैं 2016 में आया हूं, वहीं पैदा हुआ, तमाम उम्र वहीं रहा हूं। मेरे साथ कभी पीपल्स पार्टी वालों ने तो इस तरह नहीं किया, मतलब इस तरह कभी भी तंबू नहीं लगे हुए थे, इस तरह कभी भी म्यूजिक नहीं लगे हुए थे, इस तरह कोई कराची में और भी बहुत लोग रहते होंगे ना, मैं एमक्यूएम का भी बहुत दौर था, बड़ी ताकत थी, नेवर हैपन्ड, मतलब उनके एमक्यूएम के तो पॉलिटिकल लीडर्स शायद सबसे ज्यादा शायस्ता और शगुफ्ता लोग थे,
मगर वो टॉर्चर करते होते थे, ड्रिलें फिरवा दिया करते थे टांगों में।
देखिए अब वो अपना क्या कर रहे थे, मैंने तो कहा ना कि अगर मैं अपनी बात करूं जो मैंने देखा है, मतलब या आप कराची में सीवीयू पे जो भी रहा है आप उसे पूछ लें, सिवाय पीटीआई वालों के इस तरह की हुल्लड़बाजी किसी ने की ना, मुस्लिम लीग नून के हमने कभी इस तरह के जलसे और इस तरह के म्यूजिक और इस तरह का शोर, और फिर अगर आप जाके उनको कहो कि भाई खुदा के लिए यार हम यहां रहते हैं, आज 8वां दिन हो गया यार, तुम लोग रात के 3 बजे तक इस वॉल्यूम पे मेरे सर पे लाउड स्पीकर लगा के चला रहे हो, तो आपको आगे से गालियां पड़े, आपकी माँ बहन को गालियां दी जाए और आपको कहा जाए कि आप चोरों के साथ।
मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है, मैं तो छोटा भाई उसको कहती हूँ, खफा हो गए आप भी मेरे से। एक बात याद रखिएगा, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, आप मुझे जो भी बैड वर्ड यूज करना है आप यूज कर लीजिएगा। आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, नो, वी आर नॉट पेड, दिस इज नॉट अ वी लॉग, दिस एवरी सेकेंड ऑफ दिस चैनल इज पेड एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू सपोर्ट एनी पोलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। 70 साल से हम अपनी सहूलत के लिए 1971 को भी लिंक करते हैं, उसको भी लिंक करते हैं। पीटीआई भी आई थी ना, तो आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की छतर छाया के बीच में ही आई थी। नून लीग भी आई तो आर्मी की छतर छाया के बीच में ही आई थी। पीपल्स पार्टी भी आई तो जब उन्होंने उनका कहा माना तो तभी आई थी, और सरेंडर भी किया तो उन जिस जिसने ज्यादा सरेंडर किया उसको उतना ज्यादा ज्यादा टेन्योर मिला था। सर आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद मी,
थैंक यू एंड
अल्लाह करे। मैं हाईजैक करंट भी बड़े माहिर हैं, मैंने पता चलिया रिसेंटली समबडी वांटेड टू हाईजैक यू, आई सेड आशर अजीब को तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं गोली मार दूंगी उसको भी और खुद को भी।
मुझे नहीं समझ में, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन,
समबडी वांटेड टू हाईजैक यू। एनीवे अजीज आप बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिएगा, तुम बड़े लोग को ताड़ी समझ तो उत्तर लंगेगी ये गल, अभी इजाजत दीजिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, अशर अजीम आप भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मैंने ऑलरेडी किया है।
आई लव यू, थैंक यू माय डियर ब्रदर, थैंक यू, आई रिस्पेक्ट यू। और मैं कसम से गलत नहीं कहती, जो पढ़े लिखे लोग हैं इन्होंने पाकिस्तान को जायदाद भी डूबी, जमीन भी डूबी, वो माने ना माने, ही नेवर सेज बैड अबाउट दैट, दिस इज एक्चुअल लव, ये है वतन की मिट्टी गवाहर है। इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज नान कबाब से खाना जरूर खाने के लिए जाइएगा, नान कबाब अफगान ग्रिल है, दे आर इन वॉन, दे आर इन स्कारबो, दे आर इन मार्कम। ओह अशर अजीम आप चले गए होंगे, हो
नहीं नहीं मैडम मैं यही
हूं। ओह एक बंदे का पैगाम सुन ले, उन्होंने कहा जी आपने साइबर ट्रक ऑर्डर किया था ना तो फिर आपने कैंसिल कर दिया, इज दैट राइट? लो जी वो कहते ने कि साइबर ट्रक सेल्स आर डाउन एज राकून्स ट्राई टू गेट इन ट्रक बैड थिंकिंग दैट इज डंपस्टर।
वो बाकी शक्ल थी, अब मुझे उसकी बुरी पूरा दान
समझते ना, राकून एंटर होते हैं तो उन्होंने लिखा है कि ग्रेट डिसीजन बाय अशर अजीम दैट आपने साइबर ट्रक को जो है ना छोड़ दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अशर अजीम, आई लव यू अलीजा, थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद वालों के दिमाग बहुत चलते हैं, नान कबाब से खाना खाने जरूर जाइए, देर इन स्कारपो, देर इन मार्कम, देर इन मिसागा, देर इन मिसागा, देर इन मिसागा, देर इन वॉन, मैंने 3 दफा कहा तो इसका मतलब 3 लोकेशन है। तो आपने जाना कहाँ पे है, नान कबाब पे। वी आर ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय अरहम बिल्डर्स, ऑफकोर्स अरहम बिल्डर्स एंड रेनोवेटर्स, रेनोवेशन करानी है या पूरा का पूरा घर नीचे से लेकर ऊपर तक बनवाना है, अरहम नदीम साहब को कॉल कर, आए जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे ना उन्हें, उनसे कहिएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाए तो फिर वो आपको खिलाएंगे एक, यार वो एक मिठाई लेके आए थे हमारे ऑफिस में, इतनी मजेदार थी, कोई आया तो उसको दे दी। अगले दिन उन्होंने मुझसे पूछा ये कहाँ से ली थी, मैंने कहा मैंने तो आप नहीं पता कहाँ से ली थी, मैं तो डब्बा ही आपको दे दिया, डब्बे के ऊपर से पढ़ लो। अरहम बिल्डर्स एंड रेनोवेटर्स बकलावा, एग्जैक्टली, नदीम साहब का नंबर 416-841-5825, 841-5825। क्विक ट्रक मेरे भाइयों, अगर आप ट्रक चलाते हो तो प्लीज क्विक ट्रक ल्यूब पे जरूर जाओ, क्विक ट्रक, क्विक ट्रक, क्विक ट्रक ल्यूब, आप 30 मिनट्स में, 35 मिनट्स में, आप किसी इंटर प्रोविंसेस भी अगर ट्रेवल कर रहे हो, नहीं भी अमेरिका जा रहे थे ना सही, तुम इंटर प्रोविंसेस भी ट्रेवल कर रहे हो, ऑन एवरी हाईवे दे हैव इन एंड आउट सेक्टर्स जहां से आप ग्रीसिंग, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज एंड सो मेनी अदर थिंग्स लुक आफ्टर कर सकते हैं। क्विक ट्रक ल्यूब, चांदनी बैंक्वेट हॉल, ग्रुप ऑफ हॉल्स है, इनकी वेबसाइट www.chandanibanquethall.com के ऊपर आप आए तो वहां से भी आप बात कर सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, चंद स्पॉन्सर्स विल कम बैक।
कॉलेज अब ओपन है, जिसे एस्टैब्लिश किया था इस्लामिक सेंटर ऑफ कैम्ब्रिज ने 1992 में और जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा ने 3000 ओंटारियो के स्कूल्स में से नंबर वन स्कूल का रैंक दिया था। यहाँ पे तहफीजुल कुरान के प्रोग्राम लड़के और लड़कियों दोनों को ऑफर किए जाते हैं। रजिस्टर करें अपने बच्चों को जूनियर किंडरगार्टन टू ग्रेड 8 और फायदा लें क्वालिफाइड टीचिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं @1519-740-6855 या विजिट iso-cambridge.com।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
एना सोना कर लिया, हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।